ओम ओम ओम। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति पर्वतप्रोत स्तोत्र शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति के भाव उस पर विचार चल रहा है। भक्तों के हृदय में कैसे भाव होते हैं और अपना भाव भगवान के प्रति किस तरह प्रकट करना चाहिए, ये सारी चीज यहां इन स्तोत्रों के द्वारा मालूम होता है। अभ्यास करने के लिए 38वां श्लोक है। प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शित सुधा मूर्ति प्रसन्न शिव सोम सद्गुण सेवितो मृगधर पूर्णस्तमो मोचक चेतः पुष्कर लक्षितो भवति चेद् आनंद पाथो निधि आनंद पयो निधि प्रागल्भेन विजृंभते सुमनसाम वृत्तिस्तदा जायते। धर्मो मे चतुरंग्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं काम क्रोध मदादयो विगलितः काला सुख विस्तृता ज्ञानानंद महोषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा माने मानस पुंडरीक नगरे राजावतंसे स्थिते दीयंत्रेण बचो घटे न कविता कुल्योपकुल्याक्रमे आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितं मोराशि दिव्यामृते हृत्केदारयुताश्च भक्ति कलमः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्ष्यान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीति कुतः पापोत्पात विमोचनाय रुचिरेर स्वर्याय मृत्युंजय स्तोत्र ध्यान नति प्रदक्षिण सपर या लोकना कर्णने जुहा चित्त शिरोंगृहस्तनयन श्रोत्रेरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर् मामेव मामेवच। धर्मो मे प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शित सुधा मूर्ति प्रसन्न शिव सोमस सद्गुण सेवितो मृगधर पूर्णस्तमो मोचक चेता पुष्कर लक्षितो भवति चेद् आनंद पाथो निधि प्रागल्भेन विजृंभते सुमनसाम वृत्तिस्तदा जायते। उपमा अलंकार पूर्वक भगवान शंकराचार्य जी शिव भक्ति के लिए स्तोत्र का गान करते हैं। उपमा है उस रात्रि का जो कृष्ण पक्ष के मध्य के आसपास की तिथि हो, कृष्ण पक्ष के मान लो अष्टमी नौमी दशमी आदि, मध्य रात पर्यंत अंधकार रहता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी नौमी दशमी तिथि के आसपास और अमावस्या में तो पूरे रात अंधकार रहता है, पूर्णिमासी में पूरे रात प्रकाश रहता है और कृष्ण पक्ष में रात के प्रहर के अनुसार चंद्रमा का उदय होता है। और ज्यों ज्यों तिथियां बढ़ती जाएंगे त्यों त्यों रात्रि का अंधकार बढ़ता जाएगा और पूरे अमावस्या में रात्रि से अच्छन्न होगा अंधकार से अमावस्या के में। तो लगभग वही उपमा यहां दे रहे हैं, जैसे रात के समय में बिल्कुल अंधकार से घिरा हुआ होता है तो नगरवासी गांववासी प्रतीक्षा करते हैं कि कब चंद्रमा उदित होगा, तिथि गिनने लगते हैं कि आज कौन सी तिथि है, अष्टमी है नवमी है, ओहो आज अष्टमी नवमी है तो रात्रि के इतने बजे तब चंद्रमा उदित होंगे, दशमी है तो इतनी बजे, तब तक क्या होगा अंधकार ही में रहना पड़ेगा। अब जब तिथि अनुसार जब पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के प्रकाश से सारा अंधकार हट जाता है, नगरवासी ग्रामवासियों में आह्लादन एक खुशी का लहर वातावरण छा जाता है। रात्रि का समय होने पर भी चंद्रमा जब खिले हुए हों उदय हों उसके प्रकाश में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, शीतलता स्वच्छता प्रकाशपूर्ण वातावरण में व्यक्तियों के हृदय में एक उमंगता आनंद का लहर चल पड़ता है। इसी तरह यहां उपमा भगवान शिव के लिए कह रहे हैं, प्राक पुण्य अचलम प्राक पुण्य अचल। तो चंद्रमा किधर से उदित होते हैं तो बोले पूर्व दिशा से, तो पूर्णागिरी अचल माने पर्वत, पुण्यागिरी पुण्य का गिरी पहाड़ पुण्यगिरी, अल्मोड़ा में पूर्णागिरी नामक पर्वत है, टनकपुर से थोड़ा आगे जाओ तो वहां पूर्णागिरी नामक पर्वत है, उस पर्वत के चोटी में देवी का मंदिर है और देवी का नाम है पूर्णागिरी देवी है। बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है चैत्र महीना में विशेष करके, तो उसी तरह यहां प्राग पुण्य अचल पुण्य अचल अचल माने पहाड़। चंद्रमा उदित होते हैं तो वही पहाड़ के चोटी से उदित होते हैं। अब आप बंबई वासियों को क्या पता कि पहाड़ के चोटी से चंद्रमा उदित होते हो, आप तो कहोगे किसी घर जो ऊंचे अट्टालिका है टावर है उसके छत में से उदित होते हैं, आप तो यही कहोगे ना। बीस मंजिला 40 मंजिल के घर हैं उसके रात्रि को चंद्रमा कहां से उदित होंगे, तो उसी के छत में से उदित होंगे और क्या। लेकिन जहां पहाड़ी पहाड़ों के बीच में रहते हो तो वो क्या कहेंगे चंद्रमा कहां से उदित होते हैं, बोले वो जो पहाड़ है उसकी चोटी से चंद्रमा उदित होंगे। सूर्य किधर से उदाएंगे उदित होंगे तो बोले पहाड़ की चोटी से। नेपाल आप लोग पोखरा गए हो तो प्रातः काल वो हिमालय के चारों तरफ हिमालय हिमालय सफेद हिमालय और सुबह के समय में सनराइज सूर्य उदय देखने के लिए व्यक्ति उठ जाते 4 बजे से ही और छतों में जाकर पहाड़ों में जाकर बैठते हैं उस आनंद को देखने के लिए। कनक गिरी निभम सुवर्णमय पहाड़ को देखने के लिए। किधर से सूर्य उदाएंगे भाई किधर से उदित तो होंगे सूर्य, बोले उस पहाड़ के चोटी से। आज सूर्य के पहाड़ के चोटी से निकलेंगे लेकिन वो संकेत है, वो चारों तरफ पहाड़ है इसलिए किसी पहाड़ के चोटी से ही तो निकलेंगे वो। प्राक माने पूर्व दिशा, प्राक माने पूर्व दिशा, कभी चंद्रमा उत्तर और दक्षिण या पश्चिम से उदय नहीं है, इसलिए असंभव कभी ऐसा होता है आश्चर्य, तो लोग व्यवहार में ये कह दिया करते हैं, कोई व्यक्ति कभी नहीं आया वो अचानक आ गया तो बोले आज सूर्य पश्चिम से क्यों कैसे उदय गए। कोई व्यक्ति खास प्रेमी व्यक्ति आता है बहुत दिनों के बाद, तब ये उपमा दी जाती है कि आज सूर्य पश्चिम से कैसे उदा गए। यूं तो सूर्य पश्चिम से उदाना संभव नहीं है, आपको हमारे यहां आना संभव नहीं था, फिर भी आप कैसे आ गए, फुर्सत ही नहीं है आपको, फिर भी व्यंगोक्ति है ये, व्यंगोक्ति, सूर्य पश्चिम से कैसे उदा गए। तो उसी तरह प्राक माने पूर्व, पुण्याचलम पुण्य नामक पर्वत के ऊपर से मार्गदर्शित सुधा मूर्ति समस्त अंधकार को हटाकर मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ सुधा मूर्ति चंद्रमा। सुधा माने अमृत, सोम, सुधा माने अमृत, सुधा माने सोम है ना, तो सुधा मूर्ति माने चंद्रमा, अमृत की मूर्ति, चंद्रमा क्या है, अमृत की मूर्ति है। और किस लिए उदित हुआ, पूर्व दिशा से, बोले मार्गदर्शिका दर्शिता, अंधकार में जो सड़क कुछ नहीं दिख रहा था यात्री को किधर जाना है कहां जाना है, उस घोर अंधकार में बैठे हुए थे, उनको चंद्रमा रास्ता दिखाने के लिए प्रकट हो गए, इसलिए मार्गदर्शिता चंद्रमा का नाम मार्गदर्शिता, रास्ता दिखा दे, अंधकार को हटाकर रास्ता दिखा दे, मार्गदर्शिता सुधा मूर्ति ही। अप्रसन्न स्वच्छ है इसलिए शिव ये संबोधन है, शिव सोम सद्गुण से विथो, सोम सद्गुण से विता, वो चंद्रमा कैसा है तो शुद्ध सात्विक गुण से युक्त होने के कारण सद्गुण से विता, या फिर चंद्रमा का विशेषण है सद्गुण से विता, दुर्गुण व्यक्तियों के लिए वह बड़ा पीड़ादायक है चंद्रमा, सद्गुणियों के लिए वह आनंददायक है। जैसे कोई चोरी करने वाला चोर हो, रात्रि चोरी के ताप में लगे हो और अंधकार हो तो उनके लिए हितकारी है, चोरों के लिए अंधकार हितकारी है, सहकारी है, सहयोगी है, और यदि उजाला हो गया चंद्रमा का, पूर्णिमा चंद्रमा खुला उजाला है, प्रकाश है, तो चोरों के लिए तो वह सेवित नहीं है, चोर कहेंगे ये कहां से ये इसी समय में चंद्रमा प्रकट हो गया है? सब सो गए थे, अब मौका था तो ये चंद्रमा प्रकट हो गया, अब चंद्रमा को ढकेंगे कैसे उन चोरों द्वारा, चंद्रमा ढक पाएंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो वो लोग चंद्रमा को अच्छा नहीं मानेंगे, दुर्गुणी व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति चंद्रमा को अच्छा मानेंगे, वो तो अंधकार में ही अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन सद्गुण साधु संत लोग उस समय में उस प्रकाश में भी अपने आनंद का अनुभव करते हैं। यदि नींद खुल गया तो बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके आसन लगाकर, पद्मासन लगाकर, सिद्धासन आदि लगाकर बैठकर परमात्मा का ध्यान करने लग जाएंगे, तो जिसके जीवन में अनेक प्रकार के सद्गुण हैं वे लोग चंद्रमा को सेवित यानी बड़ा अच्छा मानते हैं, चंद्रमा का सेवन करते हैं। सोमा सद्गुण सेवितो मृगधर, चंद्रमा के बीच में मृग रहता है भाई, कोई खरगोश रहता है बोलते है, कोई है ना, कोई कोई क्या कहते हैं खरगोश रहता है, इसलिए चंद्रमा का नाम शशि है, सासलो सासलो रहे जहां उसका नाम शशि, सस सस नाम संस्कृत भाषा में, सस नाम संस्कृत भाषा में खरगोश को सस कहते हैं, सशश्रृंग आप लोगों ने कई बार सुना है ना, सशश्रृंग सशश्रृंग हरि तक आदि उपमा देते हैं ना, तो सस माने उसी से गुजराती भाषा में ससलो हाँ, और हिंदी में खरगोश, संस्कृत में सस, और उसी से शशि चंद्रमा सस। लेकिन यहां कहते हैं सस की जगह मृग कह दिया, एक ही चीज है वो सस धारा है, ये मृग धारा है, वहां खरगोश धारण किया हुआ है चंद्रमा ने, अपने में खरगोश रखा है, और यहां कह दिया मृग धारा, क्योंकि एक ही प्रजाति के है ना लगभग, मृग और खरगोश एक ही प्रजाति की तो है, जंगल में रहते हैं हाँ, मृग हिरण के लंबे लंबे सिंह होते हैं, उसके सिंह नहीं होते, इतने ही फर्क है। पूर्णस्तमो मोचक ये विशेषण आ गया, तमो मोचक रात्रिकालीन अंधकार का वो नाशक होने के कारण चंद्रमा कैसा है, तमो मोचक चेत पुष्कर लक्षितो भवति चेद आनंद पाथो निधि। टीकाकार ने पयोनिधि भी कर दिया है, तो पयोनिधि पाठ भेद हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकता है, पाथो निधि पयोनिधि। चेत पुष्कर लक्षित, जब चंद्रमा उदित होते हैं तो फिर सारा खेत प्रकाशित हो जाता है, आनंद पाथो निधि, और आनंद का पाथी पाथ मार्ग, मार्ग का निधि संपदा, चंद्रमा आनंद प्रदायक होने के कारण आनंद पाथ निधि। प्रागल्भेन विजृंभते सुमनसाम वृत्तिस्तदा जायते, मनसा वृत्ति ही सुमनसा वृत्ति जायते, तब साधकों के शुद्ध सात्विकों के हृदय में उस चंद्रमा को देखकर हृदय में एक सात्विक वृत्ति प्रकट होती है। ये चंद्रमा का वो विशेषण है, लगभग शिवजी को चंद्रमा के साथ उपमीत किया है, और उपमित यानी दृष्टांत चंद्रमा का दिया, और इसमें दृष्टांत क्या है, तो बोले प्राक पुण्याचलम, प्राक पुण्याचल प्राक अर्थात पूर्व जन्मों के, प्राक मतलब हो गए पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के पुण्य सत्कर्म, जीवात्मा कई जन्मों के जो सत्कर्म को करता है, पुण्य कर्म करता है, और वो पुण्य कर्म इतने होते हैं कि जैसे पुण्य के पहाड़ हो, अचल पुण्य ज्यादा हो, पुण्य का पहाड़ हो, पुण्य पर्वत प्राक कर्म, इसीलिए भागवत में कहा, ये श्लोक उस प्रसंग में आता है जब वृंदावन में नहीं हाँ वृंदावन में पहुंची भक्ति, तो उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और चल फिर नहीं सकते और सो गए वो, तो उठने की तो बातें छोड़ दो, चल नहीं असमर्थ हो गए, सो गए। भक्ति तरुणा में थे, पुत्र बूढ़े हो गए और भक्ति तरुणी हुई, और भक्ति बहुत चंचल हुई वृंदावन में, और दोनों ज्ञान और वैराग्य सो गए। अब उसको उठाने की कोशिश करती है, उठती नहीं, उठते ही नहीं वो दोनों, जगाने की कोशिश करते हैं, जगते ही नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने में असमर्थ हुई। भागवत में यही ना कथा है, असमर्थ हुई, दुखी हुई, बैठे बैठे रोने लग गई कि मैं इनको कैसे जगाऊं। इतने में नारद जी घूमते हुए आए, उन महाराज जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं, उत्पन्न हूं द्राविणों देशे, कुचित कुचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंचे तो मैं बूढ़ी हो गई, वृंदावन में आ गए तो मैं तरुणी हो गई, उल्टा हो गया। ज्ञान वैराग्य जवान थे गुजरात में, वृंदावन में आकर ये बूढ़े हो गए, और मैं गुजरात में बूढ़ी थी तो यह आकर मैं जवान हो गई। ये स्थान का प्रभाव है भाई है? तो अब क्या करें? बोले ये अपने बेटों के दोनों इस तरह निश्चिष्ट होकर पड़े हैं, इनको उठाने चाहती हूं, जगाने चाहती हूं, जगते नहीं है। क्या करें महाराज, ये यहां से जगे तो कहीं और दूसरी जगह जावे। तो आप कुछ मदद करो, लक्षण से लगता है कि आप साधु हैं, और साधु का लक्षण ही है साधनोति परकार्यमिति साधु, दूसरे के काम को सहयोग करे, साथ देवे, तब उसका नाम साधु। तो इस समय मेरा काम, मैं आप मदद करो भाई, इनको जगाना है। तो नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि हाँ ठीक है, मैं जगाऊंगा, मदद करूंगा। तो गीता पाठ वेद घोष आदि सारा कर्म कर लिया नारद जी ने, सारे खुरापा जितना करना था कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगते ही नहीं है। ऐसे हैं कि सो के सोए हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी भक्ति के सामने कि मैं जब तक ज्ञान वैराग्य को जगाऊंगा नहीं, हाँ तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं, आराम से बैठूंगा नहीं। प्रतिज्ञा कर ली थी, सारे उपाय कर ली, वो जगे नहीं, तो अब क्या करें? अब भक्ति के साथ नारद जी भी दुखी हो गए। क्यों? प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बड़े दुखी हो गए थे। तो इतने में दूर से सनत कुमारों को देखा नारद जी ने। जैसे नारद माने सनत कुमार आदि चारों भाई नारद जी के नजदीक पहुंचे, नारद जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। ओहो आइए सनत कुमारों, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित न, कहीं जन्म के अर्जित पुण्य जब उदित होते हैं फल देने के लिए तत्पर होते हैं, इसको भाग्य उदय बोलते हैं। आजकल उसका भाग्य उदय हुआ है का मतलब क्या? पुण्य का फल भोग रहा है वो, पुण्य का फल सुख है, सुख भोग रहा है, इसलिए भाग्योदय हो गया। नारद जी ने कहा कि भाग्योदय न बहुजन्म, वहां जो बहुजन्म कहा है उसी पर यहां संकेत किया शंकराचार्य ने, प्राक पुण्य बहुजन्म समर्जित न भाग्य उदय न, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, जिस समय अनेक जन्मों के पुण्य का खजाना, पुण्य का पुण्य राशि, तो यहां उसको पुण्य राशि, पुण्य संचय हुए हुए पुण्य समूह को अचल माने पहाड़ की उपमा दी। तो एकादा पुण्य से तुमको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी भाई, पहाड़ ही चाहिए, पुण्य की राशि चाहिए, राशि है। पोखरा में हिमालय, एक हिमालय का नाम है अन्नपूर्णा। जब तक कहीं जमीन में अन्नों का ढेर लगाते हो ना, तो कैसा दिखता है वो अन्न का ढेर? पहाड़ की तरह दिखता है कि नहीं? ऊंचा एक पहाड़ और चोटी, पहाड़ की चोटी की तरह दिखता है वो, पर्वत छोटा मोटा पर्वत की तरह दिखता है। इसलिए पोखरा में एक पर्वत हिमालय, ठीक उसी अन्न का जो रास, बहुत अन्न इकट्ठा करते हैं तो वहां जैसा रास बनता है उसी तरह दृश्य दिखता है, इसलिए उसका नाम कर दिया वहां अन्नपूर्णा, हिमालय, हिमालय का नाम है अन्नपूर्णा। एक हिमालय फिश टेल माछा पूछ रहे मछली के पूंछ की तरह दिखता है, जिसे उसका नाम ही फिश टेल रख दिया है। ये पोखरा में जाओगे तो हिमालय दिखेंगे फिश टेल माछा पूछ रहे अन्नपूर्णा। तो उसी तरह यह पुण्य का पहाड़ खड़ा होना चाहिए। प्राक पुण्याचलम चल मार्गदर्शित, मार्गदर्शित का अर्थ होता है अनेक जन्मों के पुण्य से तब मार्ग दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं, आपके अंग्रेजी भाषा में गाइड मिलते हैं है? अब उसी को हमारी भाषा में कहना हो तो हम कहेंगे गुरु कहेंगे है? मार्गदर्शी है। हमारा मोहनीश बोलते हैं गूगल गुरु के पास जाओ। संसार के ज्ञान प्राप्त करनी हो, भौतिक ज्ञान प्राप्त करनी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो और कहां जाओ, तो बोले गूगल गुरु के पास जाओ है? कल एक श्लोक का हमारे याद आ गया था, कल की परसों शाम को शंकराचार्य जी का एक श्लोक हमको याद आ गया, हम गुनगुनाने लगे। तो मोहनीश ने पूछा गुरुजी ये श्लोक कहां का है, इसका अर्थ क्या है? तो श्लोक ये था तद यात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेतो परता हताते स्तुत्या नया वाक् परता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधा अपराधम। हे शिवा हे शंभो, तीन प्रकार का अपराध मेरे से हो चुका है और उस तीन प्रकार के अपराध ऐसे अपराध हैं कि वह उसका प्रायश्चित कुछ भी नहीं है। आप क्षमा करोगे तभी वह क्षम्य होगा, अन्यथा कृष्ण चांद्रायणी से भी वह प्रायश्चित होने वाला नहीं है वो अपराध। हाँ, क्या अपराध किया तुमने भाई? शंकराचार्य जी कहते हैं मैंने तीन अपराध बड़ा भयंकर किया, वो आप ही क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा उस अपराध का कोई भी प्रायश्चित नहीं। तद यात्रया व्यापकता हताते, मैं ये जानता हुआ कि आप सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सारे श्रुति यही कह रही है, सब गुरु यही कह रहे हैं, महापुरुष लोग यही कह रहे हैं, इसके बावजूद भी मैंने आपके दर्शन करने के लिए काशी की यात्रा की, केदार की यात्रा की, और मैं इस बात को भूल गया कि आप सर्वव्यापक हैं। मुझे लगा आप खाली केदार में हैं। तो केदार में किस लिए गए बोलो? मरने के लिए गए कि दर्शन करने के लिए गए थे? लेकिन मर क्यों गए? वो जो अपराध किया था ना उसे एक अपराध का फल भोग रहे हैं। कौन सा अपराध भाई? परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए उनको परिच्छिन्न बना दिया, एक जगह है केदार में है, ये मानकर उनकी सर्वव्यापकता को खंडित कर दिया। समझ गए कि नहीं? शंकराचार्य जी क्या कहते, मैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए केदारनाथ चला गया, इससे क्या सिद्ध हुआ? आपकी व्यापकता को खंडित कर दिया। सब जगह होते हुए आपको व्यापकता को टुकड़ों में बांट दिया, एक देशीय मान लिया, केदार में है। अरे भाई तुम जहां हो वहां नहीं है क्या? और आपके दर्शन करने के लिए मैं काशी चला गया। ले जी, सर्वव्यापक होते हुए मैं एक देशीय बना दिया आपको, तो यही तो मेरा, मेरे द्वारा आपके प्रति अपराध है, ये मैंने आपके खंडित कर दिया, परिचिन्न कर दिया। तो यात्रया, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं जगह जगह जो यात्रा की, उस यात्रा से क्या सिद्ध हुआ? बोले मुझे कुछ पुण्य मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं जानता हूं, आपकी व्यापकता को खंडित कर दिया है, वो मेरे द्वारा ये बड़ा भारी अपराध हुआ। ध्याने न चेतो परता हताते, मैं बैठकर जब ध्यान करने लगता हूं आपका, तो उस समय मैं इस बात को भूल जाता हूं कि आप मन और बुद्धि चित्त से परे हैं, इस बात को मैं भूल जाता हूं। और मन बुद्धि चित्त आदि से परे तत्व को मैं मन के अंदर लाना चाहता हूं और चित्त के अंदर हृदय के अंदर मैं लाता हूं। तो क्या हुआ, मन बुद्धि परे तत्व का मैंने खंडित कर दिया, खंडित है। जैसे बाहर खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी को उसको वहां से पकड़ के लाकर एक छोटे से पिंजड़ों में बंद कर दो और ये समझदारी है कि अपराध है, बोलो। तुम्हारे लिए तो मनोरंजन का विषय हो सकता है, हरे मिर्ची खिला खिला के उस सोगा को, राम बोलो मिट्ठू मियां और हरी मिर्ची खाने दो, राम बोलो मिट्ठू मियां, बोलो हरे राम, बेचारा अब वो खा क्या करे, लाचार है, उड़ तो पाता नहीं है, और हरे राम नहीं बोलेगा तो खाने नहीं देगा, बोल हरे राम तो हरे राम बोलता है वो, राम बोलो बोले राम, नहीं बोलेगा तो खाने नहीं देंगे, बेचारा उसकी मनस्थिति देखो, उस पक्षी की मनस्थिति तो देखो, कहां अनंत आकाश में उड़ रहा था, कहां तुमने उसको पकड़ के पिंजड़े में बंद कर दिया, कहां वो रुचि रुचि का खाना खोज खोज कर खाता था, कहां तुमने हरी मिर्ची लाल को मिर्ची खिला दी और फिर जबरदस्ती कह दिया राम बोलो, बेचारा उसकी मन की अवस्था देखो कितनी पीड़ा होती होगी उस पक्षी की। ठीक यही अवस्था में, यही अपराध मैं कर रहा हूं। आप मन बुद्धि चित्त से परे होते हुए अनंत अनंत सर्वव्यापक होते हुए भी मैंने ध्यान के माध्यम से आपको पकड़ के अपने चित्त में बंद कर दी, ये अपराध हुआ कि नहीं बोलो, ये सिवा अपराध नहीं है। मेरे मन बुद्धि का विषय नहीं है, परे का विषय है, अरे वही निश्चय करके बैठ जाओ तो ध्यान करके जबरदस्ती मेरे हृदय में आ जा आ जाओ आ ला के बंद कर दिया है। उद्धव जी हृदय में लाकर बंद करने की बात करते हैं और ब्रजवाला हैं हृदय में जो बंद था उसके निकालने की बात करते हैं है? जमुना के किनारे बैठकर ब्रजवालाएं क्या कर रही थी, ध्यान कर रहे, किस लिए ये किसका ध्यान कर रहे हो, अरे ध्यान नहीं कर रहे पर क्या कर रहे हो, बोले जो कलुआ यहां अंदर घुस गया उसको निकाल रही है, वो निकलता ही नहीं है, वो ऐसा जबरा है आके बैठ गया और निकलता ही नहीं, वो निकले तो फिर हम घर गृहस्थी का काम करें, वो यहां बैठा हुआ है हमारे घर गृहस्थी का काम सब चौपट कर दिया है, तो वो निकालने के लिए प्रयत्न कर रही है और हम लाके उसको बंद करने के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारे पास आके हर व्यक्ति कहता है महाराज ध्यान नहीं लगता, भाई किसका ध्यान करना चाहते हो, बोले परमात्मा का, अरे वो कहां से ध्यान लगेगा, वो तुम्हारे चित्त से तुम्हारे मन से बुद्धि से परे है तो मन के अंदर आएगा कैसे वो है? फिर भी उसको जबरदस्ती मन में लाना चाहते हो तो आता तो है लेकिन खुशी से नहीं आता, हो आना पड़ता है इसलिए तुम्हारे चित्त में आ जाता है, बहुत हट करते हो तो आना पड़ता है इसलिए आ जाता है, लेकिन वो प्रसन्नता से नहीं आता है, चित्त से परे का है, कैसे चित्त में आएगा। खुले आकाश में उड़ते हुए पक्षी तुम्हारे छोटे से पिंजड़े में वो अपने आप आएगा, पिंजड़ा खोल के कहो आ जा आ जा आ जा, कोई नहीं आने वाला है, उसको धोखा देकर पकड़ के लाके पिंजड़े बंद करो तो बेचारा बंद होना पड़ता है। तो ध्यान से चित्त में परमात्मा को लाने का कोशिश करना ये परमात्मा के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा जरूर होगा, पक्षी को पकड़ेंगे तो पक्षी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिसने पक्षी को पकड़ के पिंजड़े में डाल लिया उसके लिए तो फिर आनंद है, हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, बच्चे क्या मस्त आनंद मनाते हैं, पकड़ लिया पकड़ लिया ये दूसरा अपराध है। हाँ तद यात्राया व्यापकता हताते ध्यान न चेत परता हताते स्तुत्या नया बाग परता हताते मैं आपकी स्तुति करने बैठ गया, आपकी प्रार्थना करने बैठ गया, स्तुति करने बैठ गया। महिम ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी अतीता पंथा नाम तवच महिमा बांग मनसयो जानते हुए भी। हे शिवा, आपकी महिमा मेरे मन और वाणी से परे है। मेरे मन वाणी का विषय आपकी महिमा नहीं है, आपका महत्व नहीं है। अतीत बंदा नाम, मन वाणी जहां पहुंचते हैं वहां से भी परे है। अपरंपार आपकी महिमा का मैं क्या गान करूं। कह भी रहे हैं और फिर स्तुति कर भी रहे हैं। वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, कह भी रहे हैं फिर भी स्तुति किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ महाराज? बोले ये तीसरा अपराध हो गया। जो वाणी का विषय नहीं उसको वाणी के अंदर लाकर उच्छिष्ट कर देना, झूठा कर देना। मुख के अंदर जो आया वो झूठा होगा कि नहीं, बोलो? मुख के अंदर जो आएगा वो झूठा होगा कि नहीं? तो परमात्मा को मुख के अंदर लाना चाहिए। वाणी से परे है लेकिन वाणी के अंदर ला रहे हैं, ये तीसरा अपराध है। अब ये तभी, ये तीन प्रकार का जो अपराध मेरे से हो गया है, मैं प्रतिदिन स्तुति करता हूं और वाणी से परे होते हुए भी वाणी से स्तुति गान करता हूं, ये अपराध। चित्त से परे होते हुए भी प्रतिदिन ध्यान करता हूं, ये दूसरा अपराध है। सर्वव्यापक होती हुई भी मैं तीर्थ यात्रा में, भगवान केदार में है, शिवजी काशी में है, शिवजी करते हुए कभी काशी जाता हूं कभी केदार जाता हूं, ये अपराध। क्षमस्व संभो त्रिविधा अपराध, शंकराचार्य जी कहते हैं ये तीनों प्रकार के अपराध आप क्षमा करोगे तभी ये क्षम्य होंगे, अन्यथा ये क्षम्य नहीं होंगे। अब ये बहुत ऊंची प्रसंग, ऊंचा प्रसंग है। हो तो मोहनीश ने पूछा कि कहां का श्लोक है स्वामी जी, बड़ा अच्छा श्लोक है भाई, क्योंकि ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, तुम्हारे हमारे जैसे कच्चे घड़े की अवस्था नहीं है ये, वो तो घड़ा अच्छी तरह पका हुआ हो ना, उसी की अवस्था है ये। हम कच्चे तो इसी में लगे हैं बेचारे, कभी स्तुति करते हैं, कभी तीर्थ यात्रा करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गान करते हैं, क्योंकि हमारी वो समझदारी नहीं है कि वह सर्वव्यापक है इसलिए तीर्थ यात्रा करना बेकार है, हमारी उतनी समझदारी नहीं है। तो हमने कहा पता नहीं शंकराचार्य जी का स्तोत्र है, आदि गुरु शंकराचार्य, लेकिन कहां का है मुझे पता नहीं। तो महेश ने कहा कि गूगल गुरु से पूछता हूं। वो गया गूगल में ये श्लोक टाइप किया तो पूरे आ गए, पूरा स्तोत्र एक श्लोक के लिए टाइप किया तो पूरा स्तोत्र आ गया प्रिंट होकर, गूगल गुरु जी ने दे दिया, ले ऐसा एक श्लोक नहीं कितने श्लोक हैं, ले, है ना। तो ये गूगल गुरु जी भी बड़े विचित्र हैं आजकल। तो प्रसंग चल रहा था, नारद जी ने कहा शरद कुमारों को देखते ही, भाग्योदये न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वही, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविदा यही तदो दयते विवेक। तब सत्संग की प्राप्ति होती है। कब? बोले अनेक जन्मों के जो पुण्य के पहाड़ तैयार होता है तब। पुण्य की खेती से नहीं, पुण्य के पहाड़। इतना पुण्य हो कि मान लो कि एक पहाड़ ही हो गया, तो क्योंकि चंद्रमा हमेशा पहाड़ के चोटी से उदित होते हैं, इसी तरह भगवान शिव पुण्य के पहाड़ जो होगा तैयार होगा तभी पहाड़ में रहेंगे, प्रकट होंगे। चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ? पहाड़ के चोटी से। भगवान शिव कहां रहते हैं? पहाड़ के चोटी, कैलाश पर्वत। कौन से कैलाश पर्वत? बोले पुण्य का पर्वत ही है। अब इतना पहाड़ की जैसे पुण्य को बनाने के लिए कोई एक जन्म के पुण्य से थोड़ी पहाड़ बनेगा, पुण्य का पहाड़। तो प्राकर्म, कई जन्मों के पुण्य परिपाक होगा पहाड़ की तरह, तब जाकर हाँ मार्गदर्शिता श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग संसार में दो मार्ग हैं। श्रेय मार्ग का दर्शन कराने के लिए माने निर्देशन करने के लिए भगवान शिव उस पहाड़ में प्रकट होते हैं। सुधा मूर्ति सोम मूर्ति, सुधा मूर्ति माने सोम मूर्ति, सोम अर्थात उमा सहित शिव प्रकट होंगे सोम मूर्ति। सोम सुधा मूर्ति या सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, ज्ञान मूर्ति या ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या हुआ सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति का अर्थ हो गया ज्ञान मूर्ति, क्योंकि ज्ञान ही वेदांत में अमृत है। ज्ञानामृतम भोजनम है, ज्ञानामृतम भोजनम भर्तृहरि का एक श्लोक है, वो मुझे बहुत प्रिय है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी भ्राता मन संयम सैया भूमि तले दिशो विवसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुंबिनो बद सखे कस्मात् भयम् योगिनः। हे सखे हे मित्र, जिसका ऐसा उत्तम कुटुंब हो परिवार हो उसको ये संसार में फिर किस बात का भय, किस से भय, क्या डर होगा। कैसा कुटुंब, धैर्यम यस्य पिता, उसका पिता कौन है धैर्य ही उसके पिता है भाई। प्रेम कुटीर में हम पहले कथा करते थे, हो पहले नियम था हमारा मई महीना प्रेम कुटीर, जून महीना प्रेमपुरी। ये जून प्रेमपुरी का तो बहुत पुराना मेरा हुआ है, आज का नहीं है, 2500 वर्ष हो चुका है। पहले मैं प्रेम कुटीर करता था, फिर प्रेम कुटीर के बाद जून में मई में प्रेम कुटीर करता था, तो अभी तो हो गया प्रेम कुटीर नहीं गए, कम से कम में 15-16 वर्ष हो गए, छोड़ दिया। तब से प्रेम कुटीर छूटा, जब से हम नेपाल रहने लग गए तो वही कार्य अपना कार्य क्षेत्र हो गया, उधर प्रचार प्रसार, इंडिया के सब क्षेत्र बंद हो गए, केवल प्रेमपुरी अभी चल रहा है। अब भगवान से प्रार्थना करते कब तक चलेगा, है कोशिश कर रहे हैं कि बंद न हो, चलता रहे। तभी आ ही रहे, प्रेमपुरी का प्रेम बहुत ज्यादा है इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आ रहे हैं। तो प्रेम कुटीर में हम कथा करते थे, तो एक सज्जन आके कहने लगे, महाराज आपके परिवार है कि नहीं, फट से हमसे पूछ लिया उसने, आपके परिवार है कि नहीं, माता पिता है कि नहीं, बोले हाँ, माता पिता हैं, बोले हाँ, और आपने शादी किया है कि नहीं, बोले किया, पत्नी है, बोले हाँ पत्नी भी है, और बाल बच्चे, बोले बाल बच्चे भी है, भाई बंधु है, कहाँ रहते हैं, बोले यही रहते, मैं जहां रहता हूं। पहले तो उसको विश्वास हो गया था, अब की बार विश्वास नहीं हुआ, ये सब माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे कहां रहते हैं पूछा उसने, उन्होंने कहा मैं जहां रहता हूं वहीं रहते हैं, साथ ही रहते हैं। बोले बम्बई रहते हैं, बोले बम्बई नहीं प्रेम कुटीर में रहते हैं। तब उसको विश्वास हट गया कि स्वामी जी गप कर रहे हैं, पहले तक तो उसको विश्वास हो गया कि होगा सब कुटुंब होंगे जैसे सभी का होते हैं। बोले यही हमारा था, हमने कहा तुझे दर्शन करना है मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का करना है। बोले संभव है महाराज, दर्शन कराओगे, बोले हाँ कर ले देख ले। ये तो यही श्लोक बोला मैंने, धैर्यम यस्य पिता, मेरे पिता का नाम है धैर्य, धैर्य जीवन में धीरता धैर्यता। यदि अपना जीवन ही धैर्य खत्म हो गया है तो बाप क्या करेगा उसके लिए, अपने में साहस नहीं है तो बाप क्या करेगा। अपने जीवन का जो धैर्यता है वही पिता है। क्षमा च जननी, अपने हृदय में जो सब प्राणी मात्र के गलती तो करते हैं सभी, तुम भी गलती करते हो, हम भी गलती करते हैं। गलती न करना जीव के लिए बड़ा मुश्किल है, गलती करना जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। और तुम कहते हो कि गलती किया, गलती किया, बच्चों को डांटते रहते हो, पीटते रहते हो। गलती करना बच्चों के नहीं, बूढ़ों का भी जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवात्मा गलती करेगा, गलती नहीं करेगा तो जीवात्मा ही नहीं होगा। इसलिए किसी ने कहा ना, आ गई थी शिकायत लबों पे मगर करते किससे, करना बेकार था। दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठते तो बैठना बेकार था। तो लबों पर शिकायत तो आएगी, लेकिन तुम भी तो गलती करते हो ना, उसी से तुम शिकायत करो। तुम शिकायत उसी से करो जो कभी गलती नहीं करता है, और जिससे तुम शिकायत कर रहे हो वही गलती कर रहा है। और तुम खुद हजार गलती करते हो तो दूसरे की क्या शिकायत करोगे। तब इस अवस्था में क्या करना चाहिए महाराज, क्षमा। तुमने भी कल गलती की थी, हमने भी कल गलती की थी, और जब हमारी गलती सार्वजनिक हुई तो हम मन में यही चाहते हैं कि क्षमा कर दे तो अच्छा है। बोलो तुम लोग ये चाहते हो कि नहीं। तुम गलती करो और वो गलती उजागर हो, है ना? ये सबको पता चल गया कि इसने गलती की, तो उस समय तुम्हारी मनस्थिति क्या होती है? सबको पता चल गया मेरी गलती, अब तो ये सब लोग क्षमा कर दे तो अच्छा था। और उस अवस्था में यदि सब लोग क्षमा कर देते हैं तो तुम्हें प्रसन्नता होती है कि नहीं, बोलो। गलती की और दंड देने लग जाए तो तुमको और दुखी होती है, दुख होता है। तो क्षमा ही तुम्हारी मां होनी चाहिए। क्षमा बहन नाम रखने मात्र से नहीं होगा वो, है? यूं तो मां का नाम क्षमा बहन रख दिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्षमा हृदय में होनी चाहिए। प्राणियों की गलती होती है, क्षमा कर दो भाई। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति चिरम गेहिनी। शांत रहने का जो स्वभाव है यही धर्मपत्नी का लक्षण है। धर्मपत्नी हमेशा शांत होना ही चाहिए। वो घर में शांति होती है जिस घर में शांति रहती है, वो घर शांत होता है। घर की बात छोड़ दो, हृदय की बात है। गृहिणी यदि शांत हो तो घर आनंदमय होता है। हृदय में शांति है तो फिर कोई कष्ट, कोई अशांति नहीं रहेगी। शांति चिरम गेहिनी, गेहिनी गृहिणी, गेहिनी सत्य सुनो। और धैर्य पिता क्षमा मां और शांति पत्नी है तो निश्चित बात है कि सत्य पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र सत्य होना चाहिए। सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी। बहन का नाम है दया। हृदय में दया नहीं है, हृदय में तो दया नहीं है, और नाम रख दिया दया बहन, उसे कुछ नहीं होने वाला। दया हृदय में होना चाहिए, घर में नहीं। और घर में भी दया हो तो पहले हृदय में हो तब ना घर में होगा। पहले दया हृदय में हो तब घर में दया होगी। भ्राता मन संयम, तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही तुम्हारे भाई है, अब वही सुख दुख में काम देने वाले हैं। सैया भूमि तले, ये वसुधा पृथ्वी यही शयन करने के लिए आश्रय स्थल है। दिशो विवसनम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, यही वस्त्र है। दिशो विवसनम दिग्वस्त्र, ज्ञानामृतम भोजनम, रोज ज्ञानामृत का भोजन करो, तब एते यस्य कुटुंबिनो वद सके, हे मित्र जिसका ऐसा कुटुंब हो, कस्मात भयम योगिना, उस योगी को, उस ज्ञानी को, उस साधक को ये संसार में फिर किससे क्या भय रहेगा, कोई व्यक्ति निर्भय होकर विचरण कर सकता है। तो अनेक जन्मों के पुण्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है, तो उसी को यहां शंकराचार्य जी ने भगवान उमा सहित तो भगवान शिव की प्राकट्यता तुम्हारे कहने मात्र से नहीं होगा, कई जन्म के पुण्य संचित होकर एक पहाड़ का रूप लेंगे। तब भगवान शिव को रहने के लिए पर्वत चाहिए, तो पुण्य को ही पर्वत बनाओ, और पर्वत तो बनाया नहीं, और शिव जी को कह रहे आ जाओ आ जाओ, कहां आके बैठेंगे, वो तो पहाड़ के राजा है, वो आगे श्लोक आएगा, मार्ग प्राक पुण्य चल मार्गदर्शित सुधा मूर्ति प्रसन्न शिव सोम सद्गुण सेवितो मृगधर। भगवान शिव के एक हाथ में मृग रहता है, इसलिए भगवान शिव का नाम है मृगधरा। ये मृग अति चंचल होता है, मृग को चंचलता का मूर्ति माना जाता है, हाँ? तो मन भी अति चंचल है। तो ये शिव आपके हाथ में दो उंगलियों के बीच में मृग रहता है, वो कहीं भी शिव जी की मूर्ति का दर्शन करो, चार भुजा वाले, एक हाथ में मृग रहता है। मृगधारा पूर्ण स्तंभ मोचका, और भगवान शिव जब पुण्य के उदय होता है, पुण्य पर्वत से हृदय में जब शिव का स्वरूप प्राकट्य होता है, तो अनादिकालीन अंधकार अपने आप ही, अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही हट जाता है। भगवान शिव की कृपा हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होगा। जैसे दृष्टांत में उपमा दी गई थी, पूर्व दिशा में चंद्रमा जब उदित होते हैं तो सारे पृथ्वी को आवृत किया हुआ अंधकार, वो अंधकार एक सेकंड में नष्ट हो जाता है। इसी तरह अनेक जन्म के पुण्य हो और पुण्य के पहाड़ से भगवान शिव प्रकट हो, तो फिर हृदय में अनादिकालिक जो मूला विद्या है वो अज्ञान रूपी अंधकार नाशकः, उस अंधकार को नाश करने में समर्थ तो भगवान शिव ही हैं। इसलिए शिव को कहा हाँ तमो नाशकः, आगे श्लोक आएगा, बहुत सुंदर श्लोक आएगा, एक शंकराचार्य जी कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से भगवान शिव से कहते हैं, एको बार जबांधवा चिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभ वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भविन मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव। महाराज एको बारिज बांधवा, बारिज माने कमल, वारी माने जल, तस्मा जाता ही थी बारिज, बारिज माने कमल का फूल, और उस बारिज का बंधु मित्र सूर्य, क्योंकि लोक व्यवहार में भी ये दृष्ट है, दिखने में आता है कि कोई किसी का मित्र, पुराना मित्र अचानक सामने आ जाता है तो उसके 32 खिल जाते, चेहरा खिल जाता है, प्रसन्न होता है कि नहीं, चेहरा खिल उठता है, है? इसी तरह कमल सायंकाल जब सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं तो मित्र वियोगजन्य दुख से रोने लगता है और उसका मुख बंद हो जाता है कि मित्र चला गया। इसलिए सूर्य का नाम है मित्र, सूर्य के अनेक नाम मध्य एक नाम है क्या, मित्र। शशि दृष्टि षटपदी में शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हा? दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टि, उद्भिज नगा नगभिद धनुज धनुज कुलामित्र उद्भिज नगा जिन्होंने पहाड़ को उखाड़ लिया है उद्भिज नगा नगभिद अनुज इंद्र का मित्र इंद्र के भगवान शिव इंद्र के सहायक है नगभिद अनुज दनुज कुलामित्र दनुज माने दानव के कुल के अमित्र कौन दनुज कुल के दानवों के अमित्र हैं वो विष्णु दनुज कुलाह मित्र और मित्र शशि दृष्टि मित्र माने सूर्य और चंद्रमा जिनके आंख हैं ये देखो तो सूर्य को वहां मित्र कहा तो यहां पर भी शंकराचार्य जी कहते हैं कि एको वारिज बांधव छिति नभो वारिज बंधु माने मित्र सूर्य जब पूर्व दिशा के तरफ से सुबह सूर्य उदित होते हैं तब मित्र सामने आ गए उदित हो गए तो वारिज कमल खिल उठे सूर्य उदित होते ही कमल खिल उठते हैं और सूर्य अस्ताचल को चले गए कि मित्र वियोग का दुख होता है तो कमल बंद हो जाते हैं और जब सुबह पूर्व दिशा से सूर्य खिलने लगते हैं रोशनी आने लगती है तो धीरे धीरे कमल खिलता है सूर्य प्रकट होते ही कमल खिल जाता है ये प्राकृतिक नियम है वो व्यवहार में भी मित्र जब दिखता है तो प्रसन्न चेहरा हो जाता है तो एक ही अकेला सूर्य जो कमल का मित्र है जिसका नाम तमोमंडलम चिति नभो व्याप्तम तमोमंडलम पृथ्वी और अंतरिक्ष को व्याप्त होकर रात भर रहने वाला उस अंधकार को भगवान सूर्य अकेले एक ही सूर्य पूर्व दिशा से प्रकट होते ही वो अंधकार को नाश कर देते हैं अकेले सूर्य छिति और नभ में व्याप्त हुआ हुआ अंधकार को नाश कर देते हैं भीतवा नाश करके अपने आप छुप जाते हो ऐसा नहीं है लोचन गोचरूपी भवती अंधकार को नाश भी कर देते हैं और स्वयं सूर्य सभी के नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देते हैं एक सूर्य की विशेषता है लेकिन हमने सुना है कि आप त्वम कोटि सूर्य प्रभ ऐसे सूर्य एक सूर्य में जो प्रकाश है ऐसे सूर्य के जो प्रकाश है ऐसे एक करोड़ सूर्य के जो प्रकाश है उससे ज्यादा आपके अकेले प्रकाश है आप में जो प्रवाह है रोशनी है कोटि सूर्य की तरह है अर्जुन ने कहा है ना गीता में दिव्य सूर्य सहस्रांशो भवेद युगपद उत्थितः यदि भास सदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना हे भगवान इस समय आपके जो स्वरूप में जो प्रकाश है ऐसा लग रहा है कि एक हजार सूर्य एक साथ उदित हो और उसका जितना प्रकाश हो उससे भी ज्यादा प्रकाश आपके स्वरूप से प्रकट हो रहा है इसलिए इन आंखों से मैं आपके उस रोशनी को उस स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूं मेरी आंखें चौंधा गई है इसलिए तब सौम्य बपूर भवा तुम पहले के जैसे सौम्य मूर्ति के सामने मेरे सामने खड़े हो जाओ ये रूप तो जल्दी से जल्दी मेरे नेत्र को सहन नहीं कर पा रहा है उसी तरह शंकराचार्य जी कहते हैं शिव जी से तुम कोटि सूर्य प्रभा आपकी जो रोशनी है वो तो करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा रोशनी है क्योंकि यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषे खिलम या चंद्रमसी अच्छाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना ये अर्जुन सूर्य में जो रोशनी है वो मेरा ही है चंद्रमा में जो रोशनी है वो मेरा है अग्नि में जो प्रकाश है वो मेरा है ऐसा तुम निश्चय समझो और करोड़ों सूर्य के जैसे प्रकाश आप में होता हुआ फिर ये आश्चर्य की बात है। और आप रहते कहां हो? उसी हृदय में रहते हो। सभी प्राणियों के हृदय में तो आप निवास करते हो ना, और आप हृदय में निवास करने से ही सभी प्राणी जीव कहलाए। शिव के निवास करने से ही ये जीव कहलाए। और आप यदि हृदय में ना रहो तो फिर जीव जीव ही नहीं रहेगा। रहते कहां हो? तो हृदय में रहते। और ये मूल अज्ञान, अनादिकालिक जो मूल अज्ञान है, अविद्या है, वो अविद्या रहता कहां है? सिर में रहता है कि पांव में रहता है? कहां रहता है बोलो? अज्ञान कहां रहता है? पेट में रहता है? पेट में तो रोटी रहती है। कहां रहता है अज्ञान? हृदय में। हृदय कितना बड़ा है? बोले अंगुष्ठ मात्र पुरुषों। वहीं शिव भी रहते हैं। और शिव का प्रकाश रोशनी कैसी है? कोटि सूर्य प्रभा। और अंधकार कैसा है? तो बोले मूला विद्या, तम अज्ञान। और वो कहां रहता है? तो वही। ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? इतना प्रखर प्रकाश वाले परमात्मा भी उसी हृदय में रहे, और अनादिकालिक जो मूला अविद्या भी उसी हृदय में रहे, और फिर भी वो अज्ञान आपके स्वरूप को ढक देवे। बोलो, अज्ञान ने जीव के स्वरूप को ढका है कि परमात्मा के स्वरूप को ढका है? जीव के स्वरूप को ढका है, है? इसका मतलब मैं जीव हूं, ये तुम्हें ज्ञान नहीं है? कहां ढका है? बोलो, उत्तर दो हमको। अज्ञान ने जीव के स्वरूप को ढका है कि शिव के स्वरूप को ढका है? फिर भाषा बदल दी तुम, है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अभी अभी कह रहे थे जीव का स्वरूप ढका है। यदि अज्ञान के द्वारा जीव का स्वरूप ढका होता तो जीव को मैं जीव हूं ये बोध न हो पाता। अभी तुम्हें मैं जीव हूं ये बोध हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि अज्ञान ने जीव का स्वरूप को तो नहीं ढका है ना। जीव का लक्षण क्या है? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, यही है कि नहीं? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये किसका स्वरूप है? जीव का। ये ढका है, ये आवृत हुआ है। इसका मतलब अज्ञान के द्वारा जीव नहीं ढका है। फिर कौन ढक गया? शिव ढका है, इसीलिए परमात्मा ढका है। इसीलिए तो तुम ना कर पा रहे हो ना कि मैं शिव, अहम शिव, नहीं कर पा रहे हो ना। यदि शिव ना ढका होता तो क्या कहते? जैसे अभी कह रहे हो कि मैं जीव, इसी तरह तुम क्या कहते? मैं शिव, अहम शिवो हम कहते। अब क्या कह रहे हो? जीवो हम, मैं जीव है? तो यदि अज्ञान से शिव न ढका होता तो अकर्ता हम, अभोक्ता हम, है? आनंद स्वरूपो हम कहते ना। लेकिन अभी क्या कह रहे हो? जीव का स्वरूप तो ढका नहीं है। अहम दुखी, अहम सुखी, अहम कर्ता, अहम भोक्ता। जीव जैसा है वैसे ही तुम अनुभव करके व्याख्या कर रहे हो कि नहीं? इसका मतलब जीव का स्वरूप ढका नहीं है। जीव का स्वरूप ढका है। किसने ढका है? वो अज्ञान ने। और शिव कैसे हैं? करोड़ों सूर्य के प्रकाश के जैसे प्रकाश वाले हैं। तो आश्चर्य की बात है, ऐसे प्रकाश वाले शिव को वो अज्ञान ने ढक कैसे दिया? हैं? एक छोटा सा आपके प्रकाश का छोटा सा अंश लेकर, चिंगारी लेकर सूर्य रात भर अंतरिक्ष और पृथ्वी को ढक के बैठा हुआ अंधकार को एक सेकंड में हटा देता है, हैं? और आप इतने प्रखर प्रकाश वाले होते हुए भी वो अज्ञान ने आपको ढक कैसे दिया? ये तो आश्चर्य की बात है। एको बारी जबांधवा छिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभा विद्य किम न भवस्य हो घनतरम। क्या मैं ये मानूं कि आपकी रोशनी से ज्यादा शक्तिशाली, आपके प्रकाश से ज्यादा शक्तिशाली वह अज्ञान है और आपके प्रकाश ने उस अज्ञान को भेदन नहीं कर सका, क्या मैं ये मानूं? मैं ये मानूं? यदि आपके प्रकाश उस अज्ञान को भेदन नहीं कर पाएगा तो फिर और दूसरा तो विकल्प ही नहीं उस अज्ञान को नष्ट करने का, तो फिर आशा छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी रोशनी, आपका प्रकाश और अज्ञान, कहां वो अज्ञान, कहां आपका प्रकाश, फिर भी नष्ट क्यों नहीं हुआ? तो ये आपकी कृपा से ही वो अज्ञान टिका हुआ है। आपको ढक न सकने पर भी वो आपको ढक रहा है, आपकी कृपा से ही तो ढक रहा है, अन्यथा क्या मजाल है कि वो अज्ञान आपके सामने टिक जाए। वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम किद्रिक ममित भवित मत तमा। मत तमा मेरे जो हृदय में आपके स्वरूप को ढकने वाला जो तम है, अज्ञान है, वो कैसा है? साक्षात प्रसन्नो भवा। तत्सर्वम अपनीयमे पशुपति। हे पशुपति, उस अज्ञान को कार्य के सहित, सर्वम माने कार्य के सहित, उस अज्ञान का अपनयन माने हटा दो, और वो तभी होगा आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। मेरे प्रति प्रसन्न नहीं है तभी वो अज्ञान आपके और मेरे बीच में आकर बैठा है, और उसी बीच में आकर बैठ जाने के कारण आपके स्वरूप मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, और उस पर्दे को आप ही हटा सकते हैं, मैं नहीं हटा सकता हूं। तो आप कृपा करोगे तभी हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। तो लगभग वही तमो मोचक है। भगवान शिव हृदय में इस तरह प्रकट होते हैं तो अनेक जन्मों के समूह समुच फल देने के लिए उद्भूत होते हैं, तो उमा सहित भगवान शिवा प्रकट होते हैं। चेता पुष्कर लक्षितो। तब उस चित्त में, जिस हृदय में भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है, वह ऐसा रोशनी, ऐसा प्रकाश होता है। चेत आनंद पाथो निधि। आनंद पाथ निधि माने मोक्ष मार्ग के लिए यही पाथेय है, साधकों के लिए यही पाथेय है। पाथे माने साथ में ले जाने लायक, यात्रा में जो काम आवे उसको पाथेय बोलते हैं। यात्रा का भोजन, यात्रा का टॉर्च, टॉर्च क्या है? पाथेय है, है? यात्रा का भोजन पाथेय है, यात्रा में जो कम्बल वगैरह लेके जाते हो, ब्लैंकेट वगैरह, उसका नाम क्या है? पाथेय। पथिक, पथ में चलते समय साथ में लेकर चले, उसका नाम पाथेय। ये जो शिव का प्राकट्य है, यह मोक्ष मार्ग के लिए पाथेय है, यानी रोशनी का काम आएगा, टॉर्च का काम आएगा। निधि संपत्ति, पयो निधि भी कर दिया कहीं कहीं, टीकाकार ने पयो निधि कर दिया है। तो पय माने समुद्र, आनंद का समुद्र। प्रागल्भे न विजृंभते सुमनसाम वृत्तिस्तदा जायते। तब जाकर मन सुमन होगा और तब जाकर वृत्ति ही वो मोक्ष मार्ग के अनुकूल हो पाएगा। तो हे शिवा, इस तरह आप प्रकट हो जाए हृदय में और मोक्ष मार्ग का सहायक, अंतकरण की वृत्ति प्रकट हो सके। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। वही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।